एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प सोच की गहराई में उतर रहे हैं। ये अमेरिका में जन्मी पर इसकी गूंज आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रैग्मैटिज्म की, और इसे समझने के लिए हमारे पास है जॉन आर शूक की किताब प्रैग्मैटिज्म का सार। तो सवाल ये उठता है कि आज की जो ये दुनिया है, इतनी तेज, इतनी अनिश्चित, क्या उसमें ये 100 साल से भी पुरानी सोच हमारे किसी काम आ सकती है?
बिल्कुल, और यही तो सबसे मजेदार सवाल है। देखिए, प्रैग्मैटिज्म का मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाना नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं।
अच्छा।
हाँ, ये सोचने का, जानने का और यहां तक कि जीने का एक पूरा नजरिया है। ये कहता है कि भाई, बड़े बड़े सिद्धांत और अंतिम सत्य की खोज में क्यों उलझें? अरे, विश्वास असल जिंदगी में क्या नतीजा लाते हैं? क्या वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? क्या वो हमें बेहतर जीने में मदद करते हैं?
तो मतलब फोकस क्या सच है से हटकर क्या काम करता है पर आ जाता है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लग रहा है, पर शायद इतना।
हाँ, पर उतना सीधा है नहीं। और इसी सोच की परतें खोलते हैं जॉन आर शूक। शूक जो हैं वो अमेरिका के जाने माने दार्शनिक हैं, प्रैग्मैटिज्म के विशेषज्ञ कह लीजिए।
अच्छा।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे समझने समझाने में लगाई है। खासकर जो इसके फाउंडर थे ना, जैसे चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, उनके काम को समझने में।
और शूक की खासियत क्या है, मतलब वो इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, शूक की खासियत यह है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, वो इस सोच को आज की चुनौतियों से जोड़ते हैं, चाहे वो नैतिक हों, राजनीतिक, वैज्ञानिक, कोई भी। वो मानते हैं कि प्रैग्मैटिज्म हमें इन मुश्किलों से निपटने के लिए जरूरी दिमागी औजार, मतलब टूल्स, दे सकता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है उनके लिए, ये भविष्य का रास्ता बनाने वाला विचार है।
अच्छा, तो अब जरा किताब पर आते हैं। शौक का मेन पॉइंट क्या है इस किताब में?
हाँ, तो शौक का मकसद है प्रैग्मैटिज्म को लेकर जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करना। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है, अरे भाई, जो मर्जी मान लो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो।
हाँ, ऐसा लगता तो है कभी कभी।
बिल्कुल, लेकिन शौक दिखाते हैं कि ये सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी है, ज्यादा अनुशासित है। ये असल में सच्चाई तक पहुंचने की एक ईमानदार कोशिश है, बस इसका रास्ता थोड़ा अलग है।
हाँ, और किताब का जो दिल है वो यही है कि फिलॉसफी का काम सिर्फ हवा में बातें करना नहीं है, बल्कि जमीन पर असलियत में इंसानों की मदद करना है।
सही कहा।
ये कहता है कि किसी विचार का असली मतलब उसके प्रैक्टिकल नतीजों में छिपा है। अगर कोई विचार हमारी जिंदगी में, हमारे अनुभव में कोई फर्क ही नहीं डालता, तो शायद वो उतना जरूरी है ही नहीं।
बिल्कुल, और ये सोच पैदा कहाँ हुई? किताब हमें ले जाती है 19वीं सदी के अमेरिका। सोचिए, वो टाइम देश सिविल वॉर से गुजरा है, डार्विन का सिद्धांत पुरानी सोच को हिला रहा है।
हाँ, उथल पुथल का दौर रहा होगा।
बिल्कुल, साइंस तेजी से बढ़ रही है। ऐसे माहौल में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में कुछ दोस्त मिलते थे। एक ग्रुप था मेटाफिजिकल क्लब, इसमें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स जैसे लोग थे।
अच्छा, ये मेटाफिजिकल क्लब यहीं से शुरुआत हुई?
हाँ, कह सकते हैं कि बीज यहीं पड़ा। पियर्स जो एक जबरदस्त लॉजिशियन और साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका मूल मंत्र दिया। प्रैग्मैटिक मैक्सिम कहते हैं उसे। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर
हाँ, ये प्रैग्मैटिक मैक्सिम, इसे जरा आसान शब्दों में समझाएंगे।
हाँ बिल्कुल, पियर्स ने कहा, देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट या विचार को समझना है ना, तो ये सोचो कि अगर वो सच है तो उससे असल दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रैक्टिकल नतीजे होंगे उसके। उन सभी मुमकिन नतीजों को मिला दो, वही उस विचार का पूरा मतलब है। और अगर किसी विचार के कोई प्रैक्टिकल नतीजे सोच ही नहीं सकते, तो शायद वो विचार बेमानी है।
अच्छा, तो ये विचारों को साफ करने का एक तरीका था।
बिल्कुल, खासकर साइंटिफिक खोज के लिए, पियर्स के लिए ये बहुत जरूरी था क्लैरिटी।
ठीक है, तो पियर्स ने नींव रखी लॉजिक मेथड, लेकिन इसे आम लोगों तक कौन लाया, मतलब इसे जिंदगी से किसने जोड़ा?
हाँ, वो काम किया विलियम जेम्स ने। जेम्स हार्वर्ड में प्रोफेसर थे साइकोलॉजी और फिलॉसफी के, बड़े पॉपुलर थे, बोलने में माहिर।
हाँ, उनका नाम सुना है।
उन्होंने पियर्स के आइडिया को लिया और उसे जिंदगी का फलसफा बना दिया। जेम्स ने बात की सत्य के कैश वैल्यू की।
कैश वैल्यू मतलब पैसों वाला मूल्य, सुनने में अजीब लगता है।
हाँ, एक तरह से जेम्स का कहना था कि कोई विचार या विश्वास सच तब साबित होता है जब वो हमारी जिंदगी में काम करता है, मतलब जब वो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे, हमें जीने में मदद करे।
अच्छा,
सत्य कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो है जो अनुभव में टिकता है, जो हमें गाइड करता है। उन्होंने एक और आइडिया दिया, विश्वास करने की इच्छा, विल टू बिलीव।
विल टू बिलीव ये क्या था?
उनका कहना था कि कभी कभी, खासकर जब सबूत पूरे ना हो, जैसे नैतिक या धार्मिक मामलों में, हमारा विश्वास खुद उस सच्चाई को बनाने में मदद कर सकता है जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं।
अरे ये तो काफी बोल्ड बात है, मतलब विश्वास सिर्फ मन की चीज नहीं, वो कुछ कर भी सकता है।
हाँ बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं था जैसा कुछ आलोचक कहते हैं कि आंख बंद करके कुछ भी मान लो। जेम्स का जोर हमेशा अनुभव पर था। क्या वो विश्वास लंबे समय में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है? क्या वो बाकी अनुभवों से मेल खाता है?
समझ गई। तो पियर्स, फिर जेम्स, और तीसरा बड़ा नाम
जॉन डेवी। अगर पियर्स ने दिमाग दिया, जेम्स ने दिल, तो डेवी ने इसे हाथ पैर दिए, मतलब एक्शन में लाए।
जॉन डेवी, हाँ, इनका नाम तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुना है।
बिल्कुल, डेवी ने प्रैग्मेटिज्म को स्कूल, समाज, राजनीति, मतलब जीवन के हर पहलू में लागू किया। उनके विचार को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटलिज्म।
इंस्ट्रूमेंटलिज्म
मतलब
हमारे विचार, सिद्धांत, ये सब औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
किस लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दुनिया में बेहतर ढंग से रहने के लिए। उन्होंने तो कहा था, रट्टा मारने की जगह करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग।
हाँ, ये तो बहुत सुना है। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में उनके क्या विचार थे?
डीवी के लिए लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं था, वो उसे कहते थे मिलजुल कर जीने का तरीका, अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। एक ऐसा समाज जहां लोग आपस में बातचीत करके, सहयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके अपनी समस्याएं सुलझाते हैं।
वाह,
उनके लिए लोकतंत्र सीखने और साथ बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका था, एक तरह की सामाजिक बुद्धिमत्ता।
तो ये तिकड़ी, पियर्स, जेम्स, डेवी, इन्होंने मिलकर प्रैग्मेटिज्म को एक पूरा ढांचा दिया। एक ने लॉजिक पर जोर दिया, एक ने अनुभव और पर्सनल ट्रूथ पर, और एक ने इसे समाज और एक्शन में उतारा।
एकदम सही।
और शूक की किताब यही दिखाती है कि ये सोच सिर्फ फिलॉसफी की क्लास तक नहीं रुकी, ये नैतिकता में आए जहां फिक्स नियमों की जगह नतीजों और सुधार पर जोर दिया गया।
अच्छा,
धर्म में इसने रिलीजियस एक्सपीरियंस के महत्व को माना, भले ही पारंपरिक दावों पर सवाल उठाए। कला में भी डेवी ने कहा कि आर्ट म्यूजियम की चीज नहीं, रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा है।
लेकिन क्या ये सोच हमेशा इतनी पॉपुलर रही, इसकी आलोचना नहीं हुई?
अरे बिल्कुल हुई। लोगों ने कहा ये तो रिलेटिविस्टिक है, सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी पक्का नहीं, या ये बौद्धिक रूप से आलसी है, अरे जो काम करे मान लो, ज्यादा सोचो मत।
ये तो कह सकते हैं लोग। हाँ, और 20वीं सदी में दूसरे फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स आए, जैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तो इसका असर कुछ कम भी हुआ। लेकिन फिर हाल के दशकों में रिचर्ड रोटी जैसे नियो प्रैग्मेटिस्ट आए, जिन्होंने इसे दोबारा जिंदा किया, आज के सवालों से जोड़ा।
और शुक अपनी किताब के आखिर में शायद यही कहते हैं कि आज भी ये प्रैग्मेटिक रवैया जरूरी है।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये रवैया, मतलब एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहना, नतीजों पर ध्यान देना, ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं, और मिलजुल कर हल निकालना, ये आज पहले से ज्यादा जरूरी है।
इसके कुछ उदाहरण हैं आज के दुनिया में?
हाँ, वो देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के एजाइल तरीके, एजाइल मेथोडोलॉजी, या सरकार में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, सबूतों के आधार पर नीतियां बनाना। ये सब कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक सोच ही तो है।
सही बात है। तो इस पूरी चर्चा से कौन से बड़े सबक या मुख्य संदेश हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
देखिए, मेरे लिए सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है पूर्ण निश्चितता की खोज को छोड़ना। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि ज्ञान या सच कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है जिसे बस ढूंढना है। ज्ञान तो इंसान का बनाया हुआ एक औजार है, दुनिया से डील करने का तरीका। और औजार कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें सुधार होता रहता है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ी राहत देता है।
हाँ, ये बात तो है, बोझ उतर जाता है एक तरह से। दूसरा क्या कहेंगे?
दूसरा, नतीजों पर ध्यान देना। बातें कितनी भी अच्छी लगें, सिद्धांत कितने भी लुभावने हों, असली सवाल ये है कि जमीन पर क्या असर हो रहा है, क्या वो वाकई किसी की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। ये सोच हमें, मतलब, हवा हवाई बातों से बचाती है।
हाँ, जैसे घर में भी कोई नियम बनाने से पहले सोचना कि इससे असल में क्या फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल। तीसरा, सत्य को एक मंजिल नहीं, सफर मानना। वो जेम्स वाली बात, सत्य वो है जो अनुभव में काम करता है, ये बदल सकता है, विकसित हो सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
तो मतलब नई चीजें आजमाने से डरना नहीं चाहिए।
हाँ, और इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, गलती करने की गुंजाइश रखना, जिसे फैलिबिलिज्म कहते हैं। ये मानना कि हमारे सबसे पक्के विश्वास भी गलत हो सकते हैं, उन्हें परिकल्पना की तरह देखना जिन्हें परखते रहना है।
ये तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में, जहां हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है।
बिल्कुल, ये हमें विनम्र बनाता है, सीखने के लिए खुला रखता है। और पांचवा जो मुझे डीवी से मिला, लोकतंत्र सिर्फ राजनीति नहीं, जीने का तरीका है। लगातार बातचीत, सहयोग, प्रयोग, चाहे परिवार हो, ऑफिस हो या देश।
ये गहरी बात है। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी लाइनें या कोट्स हैं जो आपको याद रह गए?
हाँ, कई हैं। जैसे पियर्स का वो प्रैग्मैटिक मैक्सिम, किसी कॉन्सेप्ट का मतलब उसके सारे प्रैक्टिकल नतीजों का जोड़ है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किन बातों पर बहस कर रहे हैं जिनका कोई नतीजा ही नहीं।
हाँ, ये तो फालतू की बहस से बचा आ सकता है। और
जेम्स का कहना कि सत्य वो है जो विश्वास करने के तरीके में अच्छा साबित होता है, ये याद दिलाता है कि विश्वास सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, जीने का आधार है। क्या ये विश्वास मुझे बेहतर इंसान बना रहा है?
और डेवी की लोकतंत्र वाली बात तो है ही। लोकतंत्र सरकार के एक रूप से बढ़कर है। ये मुख्य रूप से संबंधित जीवन जीने का संयुक्त संचारित अनुभव का एक तरीका है।
हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। एक और डीवी का विचार जो मुझे पसंद आया, अच्छा आदमी वो है जो चाहे वो नैतिक रूप से कितना भी कमजोर रहा हो, बेहतर बनने की ओर बढ़ रहा है। इसमें सुधार की कितनी उम्मीद है, लेबल लगाने की जगह सफर को देखना।
सही बात है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल वही, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपने पर्सनल फैसले लेते वक्त। अक्सर हम सोचते रह जाते हैं, डरते हैं कि गलत ना हो जाए। प्रैग्मेटिज्म कहता है, अरे इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो।
एक्सपेरिमेंट? कैसे?
मतलब एक रास्ता चुनो, देखो क्या होता है, उससे सीखो और जरूरत पड़े तो रास्ता बदलो। परफेक्ट होने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है सीखते रहना, एनालिसिस पैरालिसिस से बचना।
हाँ, ये तो होता है। और काम की जगह पर?
हाँ, कामकाज में भी आजकल वो एजाइल तरीके की बात होती ना, छोटे स्टेप्स लो, फीडबैक लो, सुधार करो, फिर अगला कदम। ये बिल्कुल प्रैग्मैटिक सोच है। बड़े बड़े प्लान बनाने से बेहतर है करके देखो कि क्या काम करता है।
अच्छा, और लोगों से बातचीत में, बहस में?
हाँ, बहस या असहमति में सिद्धांतों पर लड़ने के बजाय ये पूछना, अच्छा आपकी बात माने तो नतीजा क्या होगा, मेरी बात माने तो क्या होगा, क्या कोई बीच का रास्ता है जिसे हम दोनों ट्राई करके देख सकें। इससे फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आता है, जीतने पर नहीं।
ये तो रिश्तों के लिए भी अच्छा है, और बच्चों की परवरिश।
शिक्षा और सीखने में तो डीवी हैं ही, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान देने के बजाय चीजें करके देखने, सवाल पूछने, गलतियों से सीखने के लिए बढ़ावा देना और खुद भी हमेशा सीखते रहने का एटीट्यूड रखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
सही कहा। और समाज के लेवल पर?
समाज या नागरिक के तौर पर किसी एक विचारधारा से चिपकने के बजाय सबूतों पर ध्यान देना, कौन सी नीतियां वाकई लोगों की मदद कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट करने और नतीजों के आधार पर बदलने को तैयार रहना। सरकार को भी एक बड़े एक्सपेरिमेंट की तरह देखना जो लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रही है।
तो अंत में इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि फिलॉसफी कोई सूखी अकादमिक चीज नहीं है। ये असल में जीने का एक तरीका हो सकती है, सोचने का एक औजार जो हमें रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकता है। ये सोच को एक्शन से जोड़ती है।
बिल्कुल, और मेरे लिए ये एहसास कि हमें हर चीज का अंतिम सत्य जानने की जरूरत नहीं है, अनिश्चितता के साथ जीना सीखना, प्रयोग करना और मिलकर रास्ते बनाना, शायद यही सबसे व्यवहारिक, सबसे प्रैग्मैटिक तरीका है आगे बढ़ने का। भविष्य लिखा हुआ नहीं है, उसे हम अपनी समझ और कोशिशों से बनाते हैं। ये थोड़ा डरावना भी है, पर मुझे लगता है रोमांचक ज्यादा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।